हैं। आदरणीय मोहन सिंघल भाई हम सभी के बीच उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई का इस सभा में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोहन भाई, जिनका संक्षिप्त परिचय 1962 में जब आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी थी और उसी समय आप इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और तभी से लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई का संतुलन चलता रहा। उसके पश्चात 1967 में आपने ONGC में सर्विस करना प्रारंभ किया और करीब 28 वर्ष तक ONGC के भिन्न भिन्न प्लांट में आप जॉब करते रहे, एक अच्छे पद पर कार्यरत रहे। लेकिन ज्ञान और योग की अधिक रुचि होने के कारण आपने जॉब से रिटायरमेंट लेकर और संपूर्ण रूप से बाबा की इस ईश्वरी सर्विस में समर्पित होकर कार्य करते रहे। आप बिहार, आसाम एवं गुजरात के कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी रहे। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपके नेतृत्व में पर्यावरण जागृति अभियान जो देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर निकाले गए और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के कारण आपको भारत सरकार के HRD मिनिस्टर के द्वारा पर्यावरण श्री का भी अवार्ड प्राप्त हुआ। हम सभी ना ऐसी हस्ती का हाथ हिला करके स्वागत सम्मान करेंगे। और मुख्य तो मम्मा बाबा की अलौकिक पालना का भी आपको बहुत सुंदर अनुभव है। अभी सुमन बहन भी बता रहे थे कि जब ब्रह्मा बाबा ने अपने पार्थिव देह का त्याग किया, ऐसे अनमोल क्षण में भी आप आबू में उपस्थित थे। उस समाह को उन्होंने उस समय पर देखा हुआ, निहारा हुआ है। तो एक बहुत सुंदर अलौकिक पालना भी आपने मम्मा बाबा की ली हुई है। तो आज बाप समान प्रकृति जीत इस विषय पर आप हम सभी भाई बहनों को ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय मोहन भाई जी,
धन्यवाद। ओम शांति। हम सभी मिलकर एक बार पुनः उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जिस रीति से हम लोगों ने सुना है कि यज्ञ के आदि काल में कहा जाता था। हम सभी इकट्ठे मिलकर ही ओ व्यक्ति मास के रूप में हम सभी मनाते हैं और हम सभी ब्राह्मणों के लिए ये एक बहुत बहुत विशेष मास है। इसका विशेष अर्थ है और हम सभी के जीवन में ये एक बहुत बहुत बड़ा महत्व रखता है। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने भी संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, वह भी इसी मास में 18 जनवरी को दिवस पड़ता है और वो भी हमें ये स्मृति दिलाता है कि हम सबको भी बाप समान वैसा बनना है। हम सभी बाबा के पुराने बच्चे हैं और ज्ञान की अधिकतम गहराइयों को जानते ही हैं, गुह्यता को जानते हैं और उसको सुनते हुए पालन करते हुए हम सबका भी यही लक्ष्य रहता है कि हम सब भी उसी स्थिति को प्राप्त करें जो हमारे मीठे बाबा ने, साकार बाबा ने प्राप्त किया। मुझे बताया गया था आज का विषय ब्रह्मा बाप समान प्रकृति जीत कैसे बने। प्रकृति शब्द, इसके भी बाबा ने कितने अर्थ बताए हैं, विशेष करके दो अर्थ इसके मोटे तौर पर है, प्रकृति अर्थात नेचर। और जब हम नेचर की बात करते हैं तो एक प्रकृति शब्द का, नेचर शब्द का अर्थ है हमारी ह्यूमन नेचर, हमारा स्वभाव। भी मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर है तेज बोलने की या शांत रहने की। जो आत्मा का स्वाभाविक संस्कार होता है उसे हम नेचर कह लेते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है, शांत स्वरूप। और वो तो एक ही नेचर है, वैसे आत्मा के जो सात गुण हैं वो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये सब आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव हैं, संस्कार हैं, ओरिजिनल नेचर है। और कैसे इस नेचर को हमें प्राप्त करना है, वर्तमान में हमारी क्या नेचर हो गई है और कैसे हम उस वर्तमान की नेचर को निकाल करके, बदल करके इस नेचर को प्राप्त करें, ये तो हम सब लोग रोज मुरली में सुनते हैं, रोज जितने भी हमारे विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो सब इनसे ही कनेक्टेड हैं और वो सब तो मुरली में आते हैं, उसका अभ्यास भी करते हैं। तो इसके लिए तो विशेष कोई बात नहीं रहती। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में किस बात पर विशेष बल दिया है, किस प्रकार से कौन सी नेचर को बदलने की जरूरत है, मतलब क्रिमिनल आई को जैसे सिविल आई बनाने की, नटशेल में कहें, बहुत सारे बाबा ने उसके टिप्स दिए है वो सारी बात। तो ये तो बात बाबा रोज रोज बताते रहते हैं, लेकिन दूसरा नेचर का अर्थ है, क्या अर्थ है, ये पांच तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और उस नेचर से ही हमारा ये शरीर भी बना है, पांच तत्व। इसीलिए कहा जाता है ये संसार जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है। तो पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने ये शरीर, पांच तत्वों से बना है। तो हद के रीति से तो पुरुष और प्रकृति का ये खेल है, हम सब आत्माएं पुरुष इस प्रकृति के द्वारा ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही है। और दूसरे बेहद की रीति से क्या है कि ये प्रकृति विशाल पांच तत्व बेहद में जो है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, उस बेहद की प्रकृति और बेहद का पुरुष। कौन है बेहद का पुरुष? परमात्मा शिव बाबा। हम सब तो आत्माएं हैं, ये लिमिटेड। तो परम पुरुष और ये परम प्रकृति, ये भी बेहद का खेल है। तो इसलिए प्रकृति जीत बनना है, यानी कि अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को जीत करके, वो है प्रकृति जीत। लेकिन दूसरा ये प्रकृति की इस विशाल प्रकृति को हम कैसे जीते, क्योंकि गायन है बाबा ने ज्ञान का जितना भी सार बताया है उस सार के आधार पर अंत मते सोगति का गायन। हम सभी पुरुषार्थी हैं, चाहे कोई नए से नया हो पुराने से पुराना हो, हम सभी का जो पुरुषार्थ चल रहा है वो उस अंतिम एक घड़ी के लिए चल रहा है जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे और जब आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर, हर एक की संपूर्ण स्थिति अपनी अपनी है, तो उस स्थिति को प्राप्त करके जाएगी और हमारी जो स्थिति होगी उसके आधार पर ही हमारा सारा आगे आने वाले 5000 वर्षों में जन्मों का आधार है। इसीलिए अंत मते सोगति कहा गया। जो भी हमारा पुरुषार्थ उसी लिए हो रहा है कि हम इतने परिपक्व हो जाएं कि अंत समय जो बाबा ने कहा है कोई भी हमें याद न आए, बस एक पाप की स्मृति कहीं पर भी बुद्धि न जाए, तो उस आधार पे जो हमारे पूरा कल्प के जन्मों का आधार है वो निर्भर करता है। तो वो जो प्रकृति है उसको हम कैसे जीते हैं, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है कि परिवर्तन का आधार, ब्रह्मा बाबा को भी शुरू से जो साक्षात्कार 1936 में भी हुए थे उसमें भी परिवर्तन का आधार बाबा को क्या दिखाया था शिव बाबा ने, परिवर्तन माने कई रीति से विनाश भी उसमें था, एक था उसके अंदर अलग अलग थे ना, तो एक तो प्राकृतिक आपदा है, यही जो पांच तत्व हैं इनका इतनी आपदा आएगी, धरती हिलेगी, बाढ़ आएगी, साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होगी, सूर्य का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाएगा आदि आदि, जिससे कि बहुत आत्माएं शरीर छोड़ के जाएंगी। तो एक तो प्राकृतिक आपदा है, दूसरा उसमें बताया था कि एटॉमिक वार, जो भी विश्व भर में अलग अलग कोने में, भारत में उसका उतना अधिक प्रभाव न भी हो लेकिन विश्व में एटम बम, उससे भी आत्माएं बहुत शरीर छोड़ के परिवर्तन सृष्टि का होगा। और तीसरा सिविल वार, यानी कि अलग अलग धर्म मत पंथ संप्रदाय उनके युद्ध, और उसमें जो बहुत पुराने लोग हैं बुजुर्ग हैं जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का भी जब युद्ध भारत की स्वतंत्रता हुई थी तो कितना बाबा इसे खूनी नाहक खेल कहते हैं, तो इसीलिए नाहक ही बहुत आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। तो हमें ये एश्योर करना है कि अंत मते सोगति हमारी कैसे हो और हम कैसे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। अगर मानो भूचाल आया, पृथ्वी हिली, यहां पर भी बैठे हैं, धरती हिली और ये सारा ऊपर से छत गिरी, गर्डर गिरे लोहे का, ये छत के नीचे दब गए, चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है, खून बह रहा है, हल्ला हो रहा है, तो ऐसे में अगर हम आत्मा भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो उस समय तो स्थिति जो है पूरी संपूर्णता की नहीं होने की संभावना है, कि चारों तरफ हाहाकार होगा, दुख होगा, अशांति होगी, ऐसे वातावरण में अगर हमने भी शरीर छोड़ दिया तो उसी हिसाब से अंतमति सोगति हो जाएगी। तो इस प्रकृति को भी हम कैसे जीते हैं, क्योंकि हमने देखा ब्रह्मा बाबा को कई बार बाबा से मिले थे, 1962-61 में ज्ञान में आए, उसके बाद कई बार बाबा से मिलना हुआ था अनेक बार, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिलना 17 और 18 जनवरी 1969 को हुआ। बाबा ने अपने पास बुला लिया बहुत दूर आसाम में, अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद पहली पोस्टिंग ONGC में आसाम में हुई थी, तो वहां पर थे और बाबा ने जैसे भेजा था और बाबा ने 17-18 जनवरी को बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह हम मधुबन में पहुंच गए और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था और वो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का निकट से बहुत मौका मिला। देखा कि कैसे बाबा प्रकृति जीत भी बन गए थे। बस हमेशा जब पहले बाबा से मिलते थे, बाबा हालचाल पूछते थे और काफी बाबा को बताते थे, बाबा उसका समाधान भी देते थे। एक एक बच्चे के साथ बाबा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा था, बस बीच में जब 1965-66 में मिला करते थे, 66-67 में, तो दो चार बस बाबा से मिलते थे, दो एक लाइन सेंटेंस बोलते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। हम लोग कहते थे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, अपनी बात थोड़ी सी ही बताई है, बहुत कम। बाबा कहते नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, पूरी बात भी बाबा बता देते थे और फिर उसका समाधान भी दे देते थे। लेकिन 17-18 जनवरी को जब हम बाबा से मिले, लगभग 6-7 बार मिलना हुआ इन दो दिनों में, क्योंकि और कोई पार्टियां नहीं थी, केवल हम और हमारे लौकिक पिताजी हम लोग ही थे। बस मिले तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, ये सेवा की बात पूछेंगे, ये धारणा से संबंधित पूछेंगे, ये बात, बस जो भी संकल्प लेके जाते थे बस बाबा जरा सा दृष्टि दी और बस बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में क्या भाव चल रहा है वो बाबा तुरंत उसको पढ़ करके समाधान दे देते। एक बार दो बार तीन बार 6-7 बार दो दिन में ऐसा हुआ, बड़ा आश्चर्य होता था। तो ये है स्थिति, मन जीते जगत जीत की स्थिति। बाबा ने अपना भी मन इतना जीता हुआ था अपने संकल्पों को कि दूसरे के संकल्प क्या चल रहे हैं तुरंत उसे पढ़ लेते थे और उसे उसका समाधान दे देते थे। तो ये स्थिति बाबा की देखी तो ये वो प्रकृति जीत है जो हद की, मन की। मन जीते जगत जीत, जिसे इच्छा मात्रम अविद्या भी कह देते हैं। तो ये स्थिति ऐसी जो बाबा की देखी। तो एक तो हमें ये स्थिति प्राप्त करनी है, प्रकृति जीत, यानी हम अपनी प्रकृति को जीते। अपनी प्रकृति को, अपने मन को जितना जीता हुआ होगा, अंत समय हमारे सामने भी बहुत सृष्टि की आत्माएं आएंगी, अनेकानेक इच्छाएं लेकर के आएंगी और हमारे सम्मुख ये इच्छा लेके आएंगी, ये मेरे जैसे इष्ट देव है, और हम उनकी इच्छाओं को तब पूर्ण कर सकेंगे। पहले उनकी इच्छा को हम जाने तो सही, क्या इच्छा है बिना उसके बोले हुए, जो हमने 17-18 जनवरी को देखा। तो पहले तो हमें ये स्थिति अपनी बनानी है, हम प्रकृति जीत तब बन सकेंगे पूरा, पहले जब हमने अपनी प्रकृति को जीता होगा, जो बाबा का ये देखा। 18 जनवरी की क्लास चल रही थी पांडव भवन में, बस तब हिस्ट्री हॉल ही था, तब तो हम भी सामने बाबा के बैठे हुए थे, थोड़े से भाई बहन जो मधुबन में थे वही बैठे थे, बाबा क्लास चला रहे थे। उस दिन बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई थी और इस कारण से शाम को जल्दी क्लास बाबा ने कॉल कर ली थी। अक्सर करके रात्रि क्लास भी 9:15 के करीब होती है, बहुत साल से हम देखते चले आ रहे हैं, 1961 से है। लेकिन उस दिन बाबा ने 7:15 ही जमुना प्रसाद भाई को बुला के कहा आज बाबा क्लास जल्दी लेगा, सबको बता दो। तो बस अनाउंस कर दिया गया, तब माइक तो होता नहीं था, एक घंटा होता था, वो घंटा बजाया उन्होंने और सबको बता दिया आज बाबा क्लास। तो सब 7:30-8 तक क्लास में आ गए और बाबा भी क्लास में आए। तो बस बाबा क्लास में आए, बाबा का स्वरूप भी बिल्कुल ऐसा फरिश्ता स्वरूप लगता था, बिल्कुल हल्का हल्का सा, जैसे कि धरती पर तैरते हुए चलते धीरे धीरे आ रहे हैं बाबा। और बाबा ने आके क्लास चलाई। तो नॉर्मली तो अब इतना ठंडी के दिन थे, जनवरी का महीना, बाबा का उम्र भी 93 इयर्स थी, कभी खांसी भी कई बार बाबा को आती थी। इसीलिए कई बार ऐसा होता था, बाबा को लगता था हम लोगों को बाबा को जैसे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन ये पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन उस दिन 18 जनवरी की रात्रि को बाबा ने आके इतना फ्लॉलेस मुरली चलाई, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न बाबा को कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी। ये एक लक्षण है कि जब आत्मा हमारी कर्मातीत अवस्था के निकट होती है तो शरीर के जो भी कर्म भोग हैं उनके ऊपर आत्मा संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेती है। और जब विजय प्राप्त होती है तो शरीर में कोई व्याधि भी होगी ना, वो जैसे उसके ऊपर जब संपूर्ण विजय हो गई तो वो हमें कोई भी व्यधान नहीं डाल सकती है। क्योंकि कर्मातीत अवस्था का मतलब ये कर्म का सारा अकाउंट हमारा सेटल हो गया। तो एक बाबा का ये जो लक्षण देखा, हमेशा क्या होता था, देखते थे जब बाबा को खांसी आती थी, तकलीफ होती थी, तो बस ऐसा लगता था जैसे बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन बाबा की स्वस्थिति इतनी पावरफुल होती थी, जो बाबा कहता है हमारी स्वस्थिति ऐसी हो जो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले, तो बस बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का एक पिक्चर रखा रहता था, कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का। अब बाबा उसे देखे, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, कष्ट है, हिसाब किताब चुक दो हो रहे हैं, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, विष्णु बनेगा, नई दुनिया होगी, कोई शारीरिक व्याधि नहीं होगी। तो बस बाबा जैसे अपनी स्वस्थिति को ऐसा मजबूत करके खांसी की जो परिस्थिति थी उस पर तुरंत विजय प्राप्त कर लेता था और वो खांसी जैसे कि अदृश्य हो जाती थी। तो एक ये हमें भी देखना है कि हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, ऐसा मन के संकल्प इतने शक्तिशाली हों कि जो कोई शारीरिक परिस्थिति आए, संबंधों की परिस्थिति आए, कोई समाज की कोई भी परिस्थिति आए, पेपर आए, उस पर हम सहज रीति से विजय प्राप्त कर सकें। तो अपनी स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर ये विजय ये प्राप्त हो सके। तो मैं बता रहा था कि किस प्रकार से बाहर की परिस्थितियों के ऊपर भी ये विजय प्राप्त करने का हमारा अल्टीमेट लक्ष्य हो। तो उस दिन बाबा 18 जनवरी को रात्रि में क्लास में आए और क्लास में आकर के बाबा ने ये पूरी मुरली चलाई। उसके बाद मुरली चला के देखो, मन जीते जगत जीत का ये लक्षण होता है, स्व प्रकृति के ऊपर भी बाबा की जीत का, कि बस बैठे बैठे हमारे मन में एक संकल्प आया कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले। सम्मुख बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे कि बाबा कुछ कहे। तो भक्ति में भी जैसे कहते हैं, भक्त के मन में कोई संकल्प होता है, भगवान तक पहुंचता है और भगवान क्या करते हैं, बस एक ही अक्षर निकलता है, तथास्तु, और भक्त की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। भक्त अगर मांगता है तो भगवान के मुंह से यही। तो ये मन में संकल्प आने की देर हुई, तुरंत ही बाबा तक, क्योंकि कर्मातीत अवस्था बाबा की थी, तो वो पहुंचा होगा और बस बाबा ने नाम लेके कुछ महावाक्य एकदम उच्चार दिए और वो हमारे जीवन के लिए जैसे सदैव के लिए गाइडिंग स्टार्स बन गए, लाइट हाउस जैसे बन गया। तो अब बाबा यही चाहता है, हम सब मास्टर ब्रह्मा हैं, तो इस कारण से हमें क्या करना है, हमारे द्वारा लोग वो इच्छा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और वो उनको अनुभव होंगे जो हम बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा या वरिष्ठ दादियों दीदियों के वरिष्ठों के द्वारा हम बच्चे अब कर रहे हैं। तो इसीलिए उसके लिए हमें अपनी पूरी की पूरी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है मानसिक तैयारी के लिए, एक तो ये बताया कि ये सब तो हम कर ही रहे हैं, जो हमारा ये इंटरनल प्रकृति को हम बदलने का प्लान कर रहे हैं, आंतरिक स्वभाव, संस्कार, ज्ञान, योग, धारणा, इन सब के द्वारा। लेकिन बाहर की प्रकृति को, जो रियली हमारे सामने बहुत बड़े से बड़ा पेपर है, उसका हम कैसे सफलतापूर्वक सामना करें, ये हमने ब्रह्मा बाबा का देखा। तब बाबा ने मुरली चलाई उस दिन, और मुरली चला के बाबा उठे, बस अच्छा बाबा, जैसे कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट कह के बाबा गए। और बस जाते जाते भी बाबा दो तीन बार मुड़े, एक एक बच्चे को दृष्टि दी, बार बार बाबा की दृष्टि दादी जी की तरफ आती थी, वो कह के बस दृष्टि दे के बस बाबा दरवाजे तक गए। और दरवाजे पर खड़े होके बाबा ने कहा, क्या अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। देखो ये है जो भीष्म पितामह का भी गायन है, इच्छा मृत्यु, यानी अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़े। हमें पहले से अगर आभास हो जाएगा कि हाँ बस बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा को आभास हो गया सुबह से, उस दिन के कई ऐसे इवेंट हैं, बाबा ने यशो दादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र हैं सारे पत्र लिखा लो, कोई भी पत्र रह न जाए। और बोला पहले रमेश भाई को कि जो भी पेंडिंग है काम, एक प्रॉपर्टी म्यूजियम वाली लेनी थी उस पे साइन करने का, कई चीजों का सारे काम बच्चे आज निपटा लो, कोई भी काम रह नहीं जाना चाहिए। तो ये कह के, और उस दिन बाबा ने ये कहा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा गए। और हम सब ने सुना है बाबा ने बस कमरे में जाके बस दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए विदाई ली। लेकिन प्रकृति जीत का खेल तो जैसे उसके बाद देखा पूरा। अब 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, मतलब अर्ली नाइट में, और 18 की रात रखा रहा शरीर, 19 के सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया 2 बजे के बाद, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी, दीदी मनमोहनी जी, जब वो आए उसके बाद ये संस्कार। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, ना कोई काला पड़ा, ना कोई दुर्गंध आई। और सबसे बड़ी बात, आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है, अक्सर शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन बाबा का शरीर में, हम लोगों ने जब स्नान कराया 21 तारीख को, सब वरिष्ठ भाई लोग वगैरह थे, और देखा तो काफी हद तक बाबा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। कोई इंजेक्शन बाबा को नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, दवाई कुछ नहीं, फिर भी बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, वैसे ही लगता था जैसे बाबा हमेशा की तरह, जैसे कहते थे आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, मिलते थे बाबा तो हाथ फैला देते थे, जो चित्र पांडव भवन में लगा हुआ है प्रैक्टिकल में बाबा वो, और बस लगता था जैसे बाबा अभी उठ करके खड़ा होगा और ऐसे ही वो करेगा। तो अब असली विषय पर, जो है प्रकृति जीत। तो ये था बाबा का प्रकृति जीत का लक्षण, कि ये शरीर, आत्मा को तो बाबा ने पावन बना ही लिया, हम सभी भी आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा, लेकिन आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत गहरा संबंध है। आदि से लेकर अंत तक इन 5 तत्वों के साथ भले अलग अलग नाम रूप के शरीर मिलेंगे हमें, लेकिन शरीर के साथ आत्मा का सबसे गहरा संबंध है। और वर्तमान समय तो यही शरीर है हम सबके, अपना अपना जिसका है, तो इस शरीर के साथ हमारा ऐसा संबंध हो कि हम शरीर के साथ कोई भी शरीर की कर्मेंद्री हमारी इच्छा के विरुद्ध कर्म न करे। आज भी जैसे मुरली में कहा ना, दृष्टि भी ऐसी हो बस हमारी इच्छा के विरुद्ध कुदृष्टि। जो हम सब ब्राह्मण हैं, चाहते हैं कोई भी ऐसा कार्य मर्यादा के विहीन न हो, छोटे से छोटा भी, लेकिन पुराने संस्कारों के कारण कई बार उस मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, चाहे संकल्प में हो, वृत्ति में हो, मंशा में, वाचा में, भले अभी करुणा में नहीं होगा, लेकिन ये जैसे कि एक सीरीज है। तो बाबा ने एक तो जैसे ये बोला और कि भाई बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, और उसके बाद बाबा ने शरीर से छुट्टी ली, और वो यही अब हम बच्चों को भी देखना है कि हम बच्चे भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। कैसे छोड़ेंगे अच्छी इच्छा से शरीर? क्योंकि अगर सडनली छोड़ा, प्रकृति के वश होके छोड़ा, कोई बीमारी के वश होके छोड़ा, कोई परिस्थितियां ऐसी आई, तो वो अंतमते जो सोगते होगी वो तो हमारे अनुकूल नहीं होगी उतनी। तो जैसे बाबा को आभास हो गया था, ऐसी हम बच्चों को भी आभास हो, ऐसे प्रकृति जीत बने। तो वो कैसे बनेंगे? मानो जो बाबा ने बताया, प्रकृति की हलचल भारत में तो बहुत ज्यादा होगी और वो ही विनाश के निमित्त बनेगी। तो मानो धरती की हलचल हुई, धरती भूकंप आया बड़ी तेजी से, तो बाबा ने एक तो ये बताया है कि जब भी कोई हलचल होगी, ये बाहर के वायरलेस और ये मोबाइल और ये सारे चीज तो फेल हो जाने हैं। हम लोगों को साइंस में, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे एमटेक में, तो वहां एक विशेष विषय था जियो साइंस का, उसमें बताया गया था जैसे अर्थ के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जैसे होते हैं, तो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रकृति के अंदर, वो लोग तो खैर लाखों की बात बोलते हैं, लेकिन कई बार हुआ है, और जब भी रिवर्सल नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ नॉर्थ पोल, तो जितने कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब क्लैश कर जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। न मोबाइल काम करेगा, न टीवी, न रेडियो, न ट्रांजिस्टर, सारे के सारे सिस्टम। तो बाबा ने कहा है जब वो सिस्टम नहीं होंगे, तब ये मेंटल कम्युनिकेशन वॉइसलेस सिस्टम, वो सब वायरलेस सिस्टम है, वो सब फेल हो जाएंगे। ये वॉइसलेस सिस्टम, निर्विकारी आत्मा जितनी होगी, यही काम करेगा, यही कम्युनिकेशन होगा। और जिसकी बुद्धि जितनी वॉइसलेस होगी, बाबा बंधा हुआ है उन बच्चों को सेफ्टी तक पहुंचाने के लिए, बच्चों के कदम ही उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां उनका बाल बांका भी नहीं हो सकता, कोई ऊपर से और दूसरा कम्युनिकेशन नहीं, ऑटोमेटिकली टचिंग होगी और हमारे पैर उधर बढ़ जाएंगे। हमने भी कई बार अनुभव किया है यज्ञ में, कई बार लेटर आते हैं लाटूर से लेकर उधर, जब से अर्थक्वेक और ये भुज का, चाहे भोपाल गेस्ट, कितने सारे केसेस ऐसे हैं, जब कभी समय होगा तो बताएंगे कैसे। बस बाबा के साथ हमारा अगर होता है तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन कंडीशन बस यही है कि हमारा ये कम्युनिकेशन वॉइसलेस कनेक्शन मेंटेन रहे। तो ये रखने के लिए और क्या करना है? तो ये जो, क्योंकि जहां पर भी ये धरती तत्व, ये हमारी मृत्यु का कारण न बने, जल तत्व मृत्यु का कारण न बने, अग्नि तत्व सूर्य वो कारण न बने, उसके लिए प्रत्यक्ष बाबा का क्या देखा वो हम बताते हैं। तो जल तत्व है, मानो पृथ्वी की बात कर रहे थे, अर्थक्वेक होगा, चारों तरफ आकार बिल्डिंग गिरेंगी, कुछ सेकंड में ही शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, आपने देखा। तो जब ऐसी परिस्थिति हो लेकिन हमारी बाल बांका भी न हो, उसके लिए क्या करें? ये धरती को हम अपना मित्र बना लें। मित्र जो है, मित्र की हमेशा रक्षा करता है, मित्र कभी मित्र के प्राण नहीं लेता। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड कहा जाता है ना। तो धरती को कैसे हम अपना मित्र बना लें? मित्रता किनके बीच में होती है? जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। शराबी की शराबी से मित्रता होगी, कोई भक्त होगा, भक्त के साथ मित्रता, जिनके संस्कार मिलते जुलते हैं उनमें आपस में मित्रता होती है और वो एक दूसरे के निकट होते हैं। तो ऐसे ही धरती का के संस्कारों से हम अपने संस्कारों को मैच करें पृथ्वी के संस्कारों से। पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा है? सहनशीलता। सहनशीलता से भी एक बड़ा गुण है दातापन का। धरती दाता है। धरती में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। धरती में बस कुछ भी चीज जल देती है, पेट्रोल, फल फूल सब्जी, हर चीज धरती देती है, दाता है। ऐसी बाबा ने कहा है, आप बच्चे भी सदा दातापन रहो, आपका हाथ सदा यूं रहे, आप मांगने वाले नहीं हो, देने वाले हो। देने का मतलब कोई स्थूल चीज से नहीं है, देने का मतलब हमारे सम्मुख जो भी आए वो प्राप्ति करके जाए, शांति की, प्रेम की, सद्भावना की, शुभ भावना, शुभ कामना। इसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन खाली हाथ कोई ना जाए। और उसी का संस्कार स्वरूप यहाँ पर मधुबन बाबा के घर आते हैं तो कोई ना कोई स्थूल गिफ्ट उसी के यादगार के रूप में अभी तक चला आया है कि हम बच्चों के यहां से कोई भी आत्मा कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। तो इसलिए धरती में जो जो गुण है, एक है ये गुण दातापन का, देते चले। तो कोई भी हमारे पास आए, प्रेम के दो शब्द बोले, बाबा कहता है उसके अगर कष्ट में है रहम की दृष्टि हो, उसको मदद करें, जिस चीज की उसे आवश्यकता है वो उस रीति से, जहां तक वो दातापन का गुण धारण किया होगा, तो ये धरती चाहे जितने भूचाल आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, कभी भी हमें कष्ट देने के या हमारी मृत्यु के निमित्त नहीं बनेगी। हमारे बचाव का रास्ता ये धरती ही खोज करके हमारे कदम उधर बढ़ाएगी जहां बचाव होगा। धरती का गुण जैसे सहनशीलता भी बताया, तो ऐसे ही जब भी कोई बात होती है, हम बच्चों के सामने बहुत परीक्षाएं आती हैं, हर एक के सामने आती हैं, लेकिन सहनशीलता का अगर गुण रहा होगा, चाहे बाहर के कष्टों को सहन करना हो, चाहे किसी के स्वभाव संस्कार के वशीभूत होके कोई बात सहन करनी पड़ी हो, चाहे अपने ही पुराने संस्कार, ये सहनशीलता का धरती का गुण अगर होगा ना, तो ये भी हमें धरती के और निकट लाएगा। और धरती हमारे मन में जब भी कोई बात होगी किसी न किसी तरीके की चेतावनी दे देगी। जैसे हम लोगों को पढ़ाया भी गया था, अभी भी अर्थक्वेक ऐसी चीज है, वैज्ञानिकों को एक सेकंड पहले तक नहीं पता चलता अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन कई जीव जंतु ऐसे हैं, सर्प है, छिपकली है, धरती के अंदर रहने वाले कुछ रेप्टाइल्स हैं अलग अलग, इवन गाय भैंस वगैरह हैं, उन लोगों को जो प्रकृति के अधिक निकट हैं, उनको आभास हो जाता है और वो तुरंत ही अपना खूंटा तोड़वा के वो भागने लगते हैं। हमने खुद भी देखा, कच्छ भुज के समय हमें उस समय अहमदाबाद में थे, आए थे, बस जब ये अर्थक्वेक आने वाला तो उससे पहले ही हमने देखा बहुत सारे लोटस में थे, बहुत सारे एकदम वो गाय भैंस वगैरह वो भागने लगे, और ऐसा ऐसा कुत्ते ऐसा भौंकने लगे पागल होके जैसे भाग रहे हैं। ये खास साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने ये वो करा है, इसके ऊपर बहुत शोध किया है कि जो प्रकृति के अधिक निकट होते हैं, मनुष्य प्रकृति के दूर जाता जा रहा है, जो पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति के निकट होते हैं, वो तुरंत ही उन्हें आभास होता है अब ये प्रकृति धरती की हलचल हो रही है, वो अपने अपने घोंसलों से बिलों से बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार से वो अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन मनुष्य को पता नहीं चलता क्योंकि प्रकृति से बहुत दूर हो गया है। तो एक ये धरती के प्रति, ये धरती के जो वो आने वाले हैं उनसे हमारा सहज कि उसके और जो जो गुण है। और धरती में क्या गुण होते हैं? बहुत गुण होते हैं धरती के अंदर, समाने की या ये सहन का, लेकिन सबसे बड़ा ये दातापन का गुण है। ऐसे ही हाँ, बंबई वालों को कौन सा सामना विशेष करना पड़ेगा? है पानी का। तो आपको अपने संस्कार जो है पानी के संस्कार के समान बनाने होंगे, क्योंकि वहां तो ना हर जगह की अपनी अपनी परीक्षाएं होंगी। जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? शीतलता। जल का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का। देखो, जल को गिलास में लिया, गिलास में सेट हो गया, थाली में लो, थाली में हो जाएगा, चम्मच में लो, चम्मच में, कटोरी में लो, कटोरी में, किसी में भी लो, उसका अपना स्वरूप नहीं है, वो फ्लेक्सिबल इतना है, एडजस्टमेंट नेचर इतनी ज्यादा है कि हर परिस्थिति के अनुकूल अपने को एडजस्ट कर लेता है। ऐसे ही अगर हमने अपना नेचर स्वभाव ऐसा एडजस्टेबल बनाया होगा, बस ये ना कहें भाई सास बहू का, बाप बेटे का, बाप भाई भाई का, बॉस सबॉर्डिनेट का, ये भाई संस्कार नहीं मिलते, झगड़ा होता है, नहीं, हम जहां हैं हमारा ऐसा एडजस्टेबल नेचर हो जो हमने ब्रह्मा बाबा में देखा, बस गंभीर से गंभीर भी इतनी गुह्य ज्ञान की मुरलियां, बूढ़े आते थे, आओ बच्चे तुम तो हम बाबा की हम जिन्स हो, आओ उनके साथ बाबा, ऐसा बस मैं सब उनको ऐसा अनुभव कराता था बिल्कुल कि उन्हें लगता था बाबा मेरा है। बूढ़ी बूढ़ी आती थी, बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं है आपके। अरे बच्ची, बाबा तो कह रहा है जो पढ़े हैं वो पढ़ाई को भूलो, और नहीं पढ़े हो तुमसे ज्यादा बहुत भाग्यशाली कोई नहीं है, और ये बाबा का ज्ञान। ये इस तरह हर एक को, छोटा बच्चा, हम भी यंग आए थे 15-16 साल के थे, कि आओ बच्चे, हाँ चलो बाबा बैडमिंटन खेलता है, चलो घुमाने ले जाता था बाबा, बाबा कई यूथ से कंसर्न बातें ऐसा पूछा। हर एक का दिल लेने की क्षमता, एडजस्टमेंट, हर एक को ये लगे छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को, ये दीदी मेरी है, ये भाई मेरे हैं, अपनेपन का आभास। और वो तब होगा जब हम अपना बड़प्पन, अपनी वो चीज भूल करके उसके साथ, ये हमारा सबका स्वभाव भी है। छोटा बच्चा होता है, भाषा नहीं बोलता, हम उसकी भाषा बोल के लो पानी पियोगे, ममम ममम, ऐसे कुछ भी करके बच्चे की भाषा बोलते हैं, जो बच्चा उस भाषा को समझ सके। तो ऐसे जल का एक सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का। एक ये गुण अगर हमने धारण किया होगा तो जल कभी भी जितनी सुनामी आएगी, जितना फ्लड आएगा, समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा, लेकिन हम उन बच्चों का बाल बांका नहीं कर सकता जिन्होंने जल को फ्रेंड बनाया होगा। तो एक फ्रेंडशिप का ये है एडजस्टमेंट। दूसरा जल का गुण है क्या? शीतलता। हाँ, ये भी बहुत बड़ा गुण है। जैसे पानी को आग में रख दो, आग में उबल जाता है, लेकिन उतार के रख दो फिर अपना ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। ऐसे हम बच्चे सब पुरुषार्थी हैं, विकार इतने समय से 63 जन्मों से विकारों के वशीभूत रहे, तो अभी भी ज्ञान सुनने और जानने के बाद भी हम बच्चों में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कोई ना कोई ये संस्कार जैसे समय पर जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें अभी हम बच्चों को ये देखना है कि भले वो अगर समय लेता है आए, लेकिन कम समय में ही वो अपनी, हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाए। जल जैसे अग्नि पर रखो उबल जाएगा, उतार के रख दो अपनी स्वस्थिति में, ओरिजिनल नेचर। ऐसे ही क्रोध के वशीभूत हम हो गए सडनली, मानो कोई परिस्थिति वश क्रोध आया, लेकिन उसको रियलाइज करके तुरंत उस परिस्थिति को बदल के हम आत्मा में शांत स्वरूप हूं, शीतल प्रेम स्वरूप हूं, उस स्थिति में अपने को स्थित करके हम नेचुरल स्थिति में आ जाएं, जो जल का ओरिजिनल गुण है शीतलता। भले उबलने पर अपना वो गुण छोड़ देता है, लेकिन फिर अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। तीसरा जल का गुण है, जल हमेशा आगे बढ़ता है। कोई भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा बोल्डर भी आया, पत्थर आया, जल रुकेगा नहीं, और घूम घाम के इधर उधर से रास्ता बना के आगे बढ़ जाएगा। ऐसे हम बच्चों के सामने भी कोई भी परिस्थितियां आए, प्रॉब्लम समस्याएं आए, हम रुके नहीं कि कब ये समस्या दूर हो और तब हम आगे बढ़े, नहीं, वो अपनी जगह है, हम अपना रास्ता बना के आगे बढ़ जाएंगे। तो जल के समान हमने गुण, तो कौन से गुण की बात कर रहे थे हम जल के? आगे बढ़ने की, हर परिस्थिति में ही वो आगे बढ़ता जाए। तो हम लोगों के सामने भी ना कोई भी बड़ी से बड़ी रुकावट, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हम सबने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आई, बैगरी पार्ट आया, लेकिन बाबा का विश्वास अटल अटूट और वो परिस्थिति को पार करके ले गए। वो रोकने का उसका प्रयास नहीं करा, क्या होगा कैसे होगा, बहुत तरफ से हरेक को संकल्प चल रहे थे, लेकिन बाबा एकदम निरसंकल्प। तो ये इसका भाव क्या है, निरसंकल्प माने एफर्ट तो हमें करना है, लेकिन ये आए उस पर, ये नहीं ये क्यों आई परिस्थिति, कैसे आई, नहीं आनी चाहिए थी, वो सब की बजाय हम अपना रास्ता बना के निकल जाए। हमें याद है हम एक बार यहां थे, बाबा के कलकत्ता में प्रदर्शनी लगाई थी, तो आर्य समाजियों ने आग लगा दी थी। आग लग गई, हमारे जो मुख्य बड़े बड़े तीन चार वकील भाई थे, संतराम जी और त्रिलोक चंद जी और मोती चंद जी वगैरह, उन्होंने कहा बाबा हमारे पास प्रमाण है, उसकी फोटोग्राफी दी गई है, ये है, हमें इन पर केस करना चाहिए और हम 100% जीतेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों पर ना केस नहीं कर सकता। हाँ बच्चे चाहे जैसे हो, लेकिन बाप नहीं कर सकता, बेचारे अज्ञानी, उन्हें क्या मालूम कि ये भगवान का काम है। अपनी तरफ से तुम्हें सावधानी की, नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस करा के रखो और ये सावधानी बरतो। लेकिन ये हम वो नहीं, तो बाबा ने आगे के लिए सावधानी भी दी, लेकिन ये पार्ट भी प्ले किया, कैसे सहनशीलता का, कैसे दया का, रहम का पार्ट, जो कि मतलब जीवन के लिए ना बहुत बहुत आवश्यक है। और पानी का क्या गुण होता है? पानी जब आगे बढ़ता रहता है तो ताजा कहा जाता है, बहती गंगा भली, लेकिन रुक जाता है तो क्या होता है? हाँ उसी में बदबू आएगी, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर भी कहीं पर ये मक्खी मच्छर माने ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बदले की भावना, ये छोटे छोटे ये निगेटिविटी अगर पैदा होती है, इसका मतलब हमारा प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक गया है, आगे बढ़ना हमारा रुक गया है। तभी ये बदबू मक्खी मच्छर वाली चीजें पैदा हो गई हैं। तो हमें टाइम टू टाइम अपना ऑडिट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करके, देख करके, झांक के, और हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं संबंध के कारण, कहीं कोई किसी परिस्थिति के कारण, कहीं ना कहीं हमारा ये आगे बढ़ना रुक गया है। तो उस पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते चले। तो कहीं पर रुकना नहीं है जिससे ये परिस्थिति रूपी मक्खी मच्छर ये सब पैदा हो और आगे बढ़। तो जितना पानी के ये फ्लेक्सिबिलिटी का, आगे बढ़ने का, शीतलता का, ये सारे गुण धारण किए होंगे, तो जितनी भी कोई सुनामी होगी, जितना कोई फ्लड होगा, तूफान होगा, कुछ भी होगा, कभी भी हमारा बाल, क्योंकि जल इन सबको देवता कहा गया है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती माता, आकाश देवता, तो ये देवता चैतन्य में है। हम लोगों ने प्रयोग, हमें याद है हमारा एक पर्यावरण जागृति अभियान निकल रहा था, हम लोग केरल में थे, 95 की बात है उस समय की, तब बाबा की, तब ये मोबाइल वगैरह और ये सब नहीं, इतने नहीं थे, मुरली वगैरह भी बाबा की चलती थी, तो पोस्ट से फिर हफ्ते भर बाद वहां पहुंचा करती थी। तो उस दिन बाबा की जो मुरली चली, थोड़ी पहले बाबा की मुरली चली थी कि बच्चे ये इन तत्वों के ऊपर आपका प्रयोग होना चाहिए, ये आप इन्हें अपना मित्र बनाओ, ये इनसे हाथ मिलाओ, गले मिलो और इनसे इनके साथ वार्तालाप करो। तो हम लोगों ने वो मुरली 95 में, हमारा केरल में कनानूर जगह थी, वहां पर हम लोग करीब 12-13 भाई बहन जो पर्यावरण जागृति अभियान में थे, वहां बाबा की ये मुरली सुनी थी। तो टेली प्रिंटर होता था और टेली प्रिंटर में अहमदाबाद मुरली आती थी और वहां से ये भेज दी जाती थी। तो ये मुरली सुनी तो हम लोगों ने सोचा चलो ये बाबा ने जो कहा इसका प्रयोग करते हैं। तो समुद्र का किनारा था, कनानूर जगह समुद्र के किनारे बसा शहर है, कि कल सुबह जाके हम लोग जल तत्व के ऊपर ये प्रयोग करेंगे। तो हम लोग भाई बहन और सेवा केंद्र की 3-4 बहनें, लगभग 16-17 भाई बहन सुबह ही सुबह 4:15 बजे समुद्र तट के गए। शांति थी सुबह, कौन होगा 4 बजे, और बहुत समुद्र से दूर, एकदम समुद्र बिल्कुल शांत था, कोई लहरें वगैरह नहीं थी। बहुत दूर रेत पर हम लोग वहां पर जाके बैठ गए और उस वातावरण में योग किया। और बाबा ने जो कहा था, वार्तालाप करो, ये जल देवता हम सब, होवनहार देवता आप भी देवता हो, हम सबको मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाना है, आइए हम सब मिलकर के हाथ मिलाएं, एक दूसरे के सहयोगी बन करके और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। हमें भी अपने, आओ हम और आप अपने संस्कार मिला करके कैसे हम आगे बढ़े। तो ये वार्तालाप करते हुए 4 बजे से योग शुरू किया। और अगर आप तक हमारी ये प्रेरणाएं पहुंच रही हैं तो आओ हम आपस में शेक हैंड करें। तो ये हम लोगों ने योग किया वहां, और देखा बस 4 के, फिर 4:15 बजे, 4:30 बजा, 4:45 हुआ, बस जल तो बहुत, समुद्र एकदम शांत था जैसा मैंने आपको बताया, एकदम शांत। और 5 बजने में, जस्ट जब 5 बजे योग खत्म करना था, 5 बजने वाले थे 5 मिनट, तो पता नहीं कहां से एक लहर आई तेजी से, और जो समुद्र काफी दूर था, 1 फुटलांग दूर जैसा, वो लहर चलती चलती एकदम तेजी से आई और जहां हम सब भाई बहन योग कर रहे थे उस जगह हम सब के चरण स्पर्श करके जैसे वो लहर चली गई जल का। ये हम लोगों ने ये प्रयोग सुना था वेदांती बहन से कि वहां अफ्रीका में उन लोगों ने करा था कि वहां पर नमक बनाते थे वो लोग, और दो साल से समुद्र के अंदर उतना ज्वार भाटा जो आता है वो नहीं आता था, तो पानी ही नहीं जाता था, तो किनारे गड्ढे किए होते हैं, पानी भरता है, फिर भर जाता है और बाद में उससे सूर्य की गर्मी से भाप बन के पानी उड़ जाता है और बचा रह जाता है, वो नमक होता है। तो वहां के बेचारे काफी लोग आते थे, बहनों शाम को योग करने वहां जाती थी समुद्र तट पे, तो बहनों ने वहां देखते थे वो, तो गांव वाले एक दिन मिल करके आए कि हे देवियों, आप तो देवियां जैसे प्रतीत होते हो, आप हमारी कुछ मदद करो, हम गरीब लोग हैं, यहाँ पिछले 2 वर्ष से बहुत कम ये चढ़ती होती है, होती नहीं, और हमारी आजीविका का तो यही साधन है नमक तो बनाने का, अब ये पानी नहीं आता है तो हम बना नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे, हम सब लोग भूखे मर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ करो। तो बहनों ने बताया था कि हम लोगों ने वहां प्लान बनाया 3 दिन तक जाके रोज योग, और हे जल देवता बाबा की उन दिनों मुरली 95 प्रकृति पर ही चल रही थी सारी अधिकतर, तो भाई आप इनकी रक्षा करो, इनको मदद करो। और 3 दिन के बाद, बस उसके बाद बताते हैं वो, उन्होंने जो बताया था, इतनी तेजी तक वो भर्ती आती रही कि जो उन्होंने गड्ढे किए हुए थे समुद्र तट पर दूर, वो सब भर गए, सारे गांव वाले आए आरती लेकर के, और बहनों को मतलब ये करा कि आप लोगों की प्रार्थना से ही ये संभव हो सका। तो बाबा जो कहता है प्रकृति के हर तत्व के साथ वार्तालाप करो, तो ये वार्तालाप से ही, ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, हमने कई बार हम लोगों ने, और सैन फ्रांसिस्को में जब अर्थक्वेक आया था, नेट पर ये आया था कि वहां पर जब अर्थक्वेक आया तो चारों तरफ विनाशकारी, आप लोगों ने सुना होगा कितना विनाशकारी था, बहुत फोटो आते रहे। एक प्रोफेसर का मकान था, वो मकान में क्रैक भी नहीं हुआ, काफी बड़ा उसका, कुछ 1-2 एकड़ का में उसका रिट्रीट हाउस था। तो मीडिया वाले सब उसके पास गए कि भाई आपका ये बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ और आपके चारों तरफ इतना विनाश हुआ है। तो उसने बताया कि मैं रोज प्रकृति के साथ वार्तालाप करता हूँ, हे धरती माता आप तो मेरी माँ हो। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज था, अमेरिकन, कोई इंडियन नहीं था, लेकिन उसको भारतीय संस्कृति में जैसे काफी फेथ था। मैं रोज वार्तालाप करता हूँ, आप तो रक्षक हो और ये हो, आओ हम और आप मिल करके किस प्रकार से इस धरती को हमें अच्छा स्थान बनाना है, आप तक अगर हमारी भावनाएं पहुंच रही हैं तो न तो मैं आपको कभी कष्ट दूंगा, न आप मुझे कभी कष्ट, उस अपनी रीति से लौकिक उनका वो पूरा नेट में छपा हुआ था। ये 95 में जब सैन फ्रांसिस्को में 95 में तो ये कना नूर का था, उनका जब आया हुआ 2000 के करीब, तो मीडिया वालों को उसने बताया मैं रोज वार्तालाप करता हूं धरती माता से, तो इतना सब कुछ आया, तो मुझे ऐसा अंदर से विश्वास है कि धरती ने चारों तरफ विनाश का करा, लेकिन इस स्थान पर जहां मैं रोज वार्तालाप करता हूं यहां मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो भाव क्या है कि प्रकृति जीत हमें बनने के लिए जो ये एक एक तत्व के बताया ना, उन गुणों के साथ हम अपने गुणों को मैच करते चले। धरती का सुना, वायु का, ऐसी वायु का क्या गुण है? हा? जस्ट कुछ एक एक ही देखते हम, वायु का गुण है हल्का बना के उठा, धरती का गुण है हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उड़ाती है। ऐसे ही अगर हम कोई परिस्थिति आई भारी न हो, हल्के रहेंगे हम जितना ऊपर उठते रहेंगे, तो जितने भी साइक्लोन आएंगे उड़ीसा के किनारे या समुद्र तट पर बचे हुए किनारे, वो साइक्लोन हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। ऐसे ये आकाश तत्व से कौन सा विनाशकारी तत्व होता है? जो उत्तराखंड में तीन तीन तत्वों ने एक साथ, एक तो क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड होते हैं उनकी बर्स्ट जल का, और फिर लैंडस्लाइड, तीन तीन तत्वों का वहां हुआ तो कितना विनाशकारी हुआ। और बाबा ने तो कहा अभी तो एक एक दो दो तत्व करते हैं, जब पांचों तत्व वो होंगे तो बहुत बहुत भयंकर होगा। लेकिन हमने खुद देखा है अनेक बार प्रयोग, अभी भी हमारा आप सबको मालूम है, कोई हम लोगों का क्रेडिट नहीं है, बाबा ने जो बताई है 30-31 दिसंबर को बहुत सर्दी थी और काफी चारों तरफ से नीचे कॉन्फ्रेंस थी, चारों तरफ से आ रहा था बहुत सर्दी है, हम कैंसिल कर रहे हैं कैंसिल ऐसा, तो वहां हमारे विंग के कुछ जो 8-10 लोग थे, हम लोगों ने योग के प्रयोग की, हे प्रकृति हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, इतना कैंपेन निकाले हैं, इतना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रकृति के, आपको हम इतना सहयोग दे रहे हैं, हमें अब आपके सहयोग की जरूरत है, आपको आगे आने वाले 3-4 दिनों में बिल्कुल नेचुरल रूप में रहना है, और ये इसमें बहुत अति में सर्दी को नहीं जाना है जो जनरल है और हमारे वाइब्रेशन के आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। बाबा ने कहा ये आप सब, हमने तो बहुत बार प्रयोग किए हैं इन चीजों के और हमेशा पाया कि ये प्रकृति सदा हमें सहयोग देती है। तो आवश्यकता यही है कि बाबा ने जो जो बताया है ना, तो ये प्रकृति जीत अगर हम बन जाएंगे तो अंत समय के लिए बाबा ने कहा है कि ये प्रकृति जीत जो होंगे ऑटोमेटिकली उनको बाबा ऐसा टच करेगा कि उनके पांव वहां बढ़ेंगे, सेफ्टी होगी। और जो हम सबकी भीष्म पितामह का गायन है इच्छा मृत्यु का, तो हम सब अपनी इच्छा से जब शरीर छोड़ के जाएंगे ना, तो अंतमते सोगते और विजयी बन के जाएंगे, जैसा हमने ब्रह्मा बाबा का वर्णन किया। और इसी के साथ ही कि हम सब लोग प्रकृति जीत बने, डबल प्रकृति जीत, हमारी ये शुभ भावना और शुभ आशा है कि हम सब विजयी होके बाबा के गले का हार बने। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ से मोहन भाई जी का अभिनंदन करेंगे। प्रकृति जीत, डबल प्रकृति जीत कैसे बनना है, खुद का भी, अपना नेचर और पांच तत्वों का भी कैसे बनना है, तो बहुत सुंदर रीति से आपने बताया। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।